नमस्कार भारत, आज है 11 अप्रैल, दिन बुधवार और मैं हूं अमरीश द्विवेदी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में कथित रेप पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत की जांच के लिए एसआईटी गठित। पीड़िता ने बीबीसी से कहा,
विधायक कुलदीप सहगल ने हमारे साथ गलत काम किया है, हमने इसका विरोध किया तो हमको धमकी देने लगे कि किसी को बताओगे तो पूरे परिवार वालों को मरवा के फेंकवा दूंगा।
फेसबुक प्रमुख मार्क जुकरबर्ग ने कई फर्मों द्वारा राजनीतिक हितों के लिए डेटा के इस्तेमाल और इसे रोक पाने में नाकाम रहने पर मांगी माफी। सुनिए गए खास रिपोर्ट बंटवारे के समय भारत आए पश्तून हिंदुओं पर।
लोग कुछ थोड़ा सा हमसे नफरत उस वक्त इसलिए करते थे कि हमारा पहरावा जो था वो वही मुसलमानों जैसा था।
राष्ट्रमंडल खेलों का हाल जानने चलेंगे रेहान फजल के पास गोल्ड कोस्ट, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में भाजपा के एक विधायक कुलदीप सेंगर पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली पीड़िता लड़की के पिता की पुलिस हिरासत में मौत हो गई है। पुलिस ने कहा है कि इस मामले की जांच करने के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। पुलिस ने पीड़िता को न्याय का आश्वासन दिया है, लेकिन अब भी पीड़ित पक्ष आश्वस्त नहीं हो पा रहा है। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने अपनी कंपनी के द्वारा एकत्र की गई जानकारी का राजनीतिक कारणों से दूसरी कंपनी के द्वारा इस्तेमाल होने देने के लिए अमरीकी सीनेट कमेटी के सामने माफी मांगी है। जुकरबर्ग ने कहा है कि फेसबुक अपनी जिम्मेदारियों के संबंध में बेहतर समझ नहीं पाया और ये उनकी निजी गलती है। उन्होंने कहा कि कैम्ब्रिज एनालिटिका प्रकरण के बाद उनकी कंपनी में अब एक बड़ा बदलाव आया है और राजनीति में प्रोपोगेंडा के लिए डेटा का इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो इसकी तह तक जरूर पहुंचेंगे। सीरिया में हुए कथित केमिकल हमले की जांच के लिए संयुक्त राष्ट्र में दिए गए अमेरिका के प्रस्ताव को रूस ने वीटो कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र में मौजूद बीबीसी संवाददाता के अनुसार इसके बाद संभावना है कि अमेरिका सैन्य कार्रवाई करे, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की दूत निकी हेली ने इस प्रस्ताव को अमेरिका की कम से कम प्रतिक्रिया कहा है। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस में सीरिया के डूमा में हुए कथित केमिकल हमले का जवाब देने के लिए सहमति बन गई है। इस हमले की जिम्मेदारी वो सीरियाई सरकार को देते हैं। निकी हेली ने कहा कि सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद को बचाने के लिए रूस सीरिया के लोगों के साथ अन्याय कर रहा है।
When the people of Duma, along with the rest of the international community, looked to this council to act, one country.
डूमा में रहने वाले लोग और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लोग संयुक्त राष्ट्र की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं, लेकिन एक देश है जो रास्ता रोककर खड़ा हो गया है। ये बात इतिहास याद रखेगा। इतिहास इसे याद रखेगा कि रूस ने सीरिया की निरीह जनता की जगह एक राक्षस को बचाने के लिए काम करने को बेहतर माना। संयुक्त राष्ट्र में अमरीका की दूत निकी हेली के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता सारा हुकाबी सैंडर्स ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि वो स्पेशल काउंसिल रॉबर्ट मूलर को बर्खास्त कर सकते हैं, जो कि राष्ट्रपति के चुनाव अभियान और रूस की कथित दखलंदाजी के संबंध में जांच कर रहे हैं। सोमवार को राष्ट्रपति से सवाल किया गया था कि क्या वो रॉबर्ट मूलर को बर्खास्त करने वाले हैं। ट्रंप ने इस सवाल का कोई उत्तर नहीं दिया था। अमरीकी चुनाव में रूस की कथित दखलंदाजी के संबंध में जांच के दौरान हाल में एफबीआई के अधिकारियों ने ट्रंप के निजी वकील माइकल कोहेन के घर और दफ्तर की तलाशी ली थी। डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने मांग की है कि स्पेशल काउंसिलर की बर्खास्तगी को रोकने के लिए कांग्रेस को एक बिल लाना चाहिए।
I'm deeply concerned that the president has indicated impulsive rash.
मुझे चिंता है क्योंकि राष्ट्रपति आवेग में हैं और वो उनके खिलाफ संभावित कार्रवाई की ओर इशारा कर रहे हैं। उनकी बातें पहले ही बता रही हैं कि वो क्या चाहते हैं। जल्द से जल्द रॉबर्ट मूलर को बर्खास्त करने से रोकना होगा। ये हमारे देश के लिए संवैधानिक संकट की तरह होगा। स्पेशल काउंसिल को बचाने के लिए जितनी जल्द हो सके कड़े कदम उठाने होंगे। मैं राष्ट्रपति को एक कड़ा संदेश हमें देना होगा कि अगर उन्होंने स्पेशल काउंसिल को बर्खास्त किया तो इसके परिणाम भयावह होंगे और जिसके असर से सरकार का कामकाज ठप हो जाएगा। उत्तरी ब्राजील के शहर बेलम में जेल से भागने की नाकाम कोशिश में 20 लोगों की मौत हो गई है। ये हादसा सेंट आइजाबेल जेल परिसर में हुआ जब हथियार लेकर कुछ कैदी जेल से भागने की कोशिश कर रहे थे और उनकी मदद के लिए एक हथियारबंद दल पहुंचा था। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी की पहली सभा नमस्कार भारत रेडियो मोबाइल और फेसबुक पर लाइव और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में कथित रेप पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में हुई मौत की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। पुलिस और प्रशासन के तमाम आश्वासनों के बावजूद पीड़ित पक्ष अभी भी आश्वस्त नहीं हो पा रहा है। वहीं दूसरी ओर मामले में अभियुक्त माने जा रहे बांगरमऊ के विधायक के परिजनों का कहना है कि पीड़ित परिवार के दबाव में आकर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इस बीच दोनों परिवार के गाँव में सन्नाटा पसरा हुआ है। सुनिए उन्नाव से समीरात्मज मिश्र की ये विशेष रिपोर्ट।
उन्नाव के जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर मंगलवार शाम काफी हलचल थी। विधायक और उनके साथियों पर रेप का आरोप लगाने वाली लड़की और उसके परिजन न्याय की आस लेकर सुबह से ही यहां डटे हुए थे। सुबह ही लड़की के पिता का अंतिम संस्कार हुआ था। परिवार के कुछ लोग जिलाधिकारी से मिलकर जब बाहर लौटे तो उनका सारा गुस्सा बांगरमऊ से बीजेपी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर उतर रहा था।
अरे बहुत इंजरी है, वो देखा नहीं आपने, बुरी तरह से मारा गया है, लेकिन वो पूरा मैनेज कर लिया। जेल में भी उसका जो चाचा है वो सप्लाई करता है, कुलदीप सिंह का कोई ठेकेदार है, भाई है कौन, वो सामान सप्लाई करता है, तो वहाँ भी उसकी पहुँच थी, तो वहाँ पे भी मारा ही होगा, इन लोग को शक है कि वहाँ भी मारा है।
पीड़ित लड़की के पिता की एक दिन पहले ही पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। आरोप है कि उनके और परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ मारपीट की गई थी। मारपीट की वजह ये बताई जा रही है कि पिछले साल रेप के मामले में जब पीड़ित लड़की की एफआईआर पुलिस ने नहीं लिखी तो परिवार वालों ने कोर्ट का सहारा लिया और अब विधायक के परिजन वो केस वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। उन्नाव के जिलाधिकारी रवि कुमार एनजी बताते हैं,
अप्रैल 3 के तारीख जो घटना हुई है उसमें आगे की कार्रवाई हुआ है, तो मगर इनका एक एप्लीकेशन माननीय कोर्ट में है कि वो 4/6/2017 को इन्होंने एक एप्लीकेशन कोर्ट में प्रस्तुत किया है, उसकी सुनवाई 12 तारीख को है, उसी के आधार पर फिर हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे।
तभी जिलाधिकारी से मिलकर बाहर आई पीड़ित लड़की मिली, एक दिन पहले हुई पिता की मौत और साल भर पहले की घटना को याद करके रो पड़ी।
ये घटना 4/6/2017 की है, विधायक कुलदीप सेंगर ने हमारे साथ गलत काम किया है, हमने इसका विरोध किया तो हमको धमकी देने लगे कि किसी को बताओगे तो पूरे परिवार वालों को मरवा के फेंकवा दूंगा। हम पुलिस से शिकायत करने गए, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई।
उन्नाव जिले से करीब 10-12 किलोमीटर दूर है माखी गाँव। माखी गाँव में ही जो पीड़ित लड़की है उनका घर भी है और जिन पे मुख्य रूप से आरोप लग रहा है विधायक कुलदीप सिंह का भी घर यहीं पे इसी गांव में है। अभी मैं इनके कुलदीप सिंह के घर पर हूँ, कई लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। उन लोगों का कहना है कि यहाँ बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि छिपाई जा रही हैं, जो नहीं बताई जा रही हैं। क्या नाम है आपका?
महेंद्र त्रिवेदी। विधायक जी के विरुद्ध कोई भी किसी भी प्रकार का कोई मामला नहीं था, जब अभी ये घटना घटी है तब ये जो है मामला इसने तूल पकड़ लिया।
लेकिन ये जो मारपीट की घटना हुई है 3 अप्रैल को हुई है, उनको मारा पीटा गया और उनके पिता की मौत भी हो गई है, तो ये तो सही घटना है?
तो जिन लोगों ने मारा पीटा है वो जेल चले गए हैं, विधायक जी के भाई को वहाँ निर्दोष फंसाया गया है मीडिया टाइल के दबाव में, तो वो अंदर अभी एसआईटी की जांच होगी तो उसमें भी सब दूध का दूध पानी का पानी, जिन लोगों ने मारा पीटा उसमें कुछ इनके घर परिवार के ही शामिल हैं। तीनों भाइयों के ऊपर कम से कम 4 दर्जन के ऊपर आपराधिक मुकदमे माखी थाने में भी दर्ज हैं। उन्नाव में कोई ऐसा लगभग थाना नहीं बचा होगा जिस थाने में इन लोगों के ऊपर हर प्रकार के मुकदमे इनके ऊपर दर्ज हैं।
माखी गाँव में सड़क की एक ओर विधायक का आलीशान मकान है तो दूसरी ओर ईंट का बना हुआ 2 कमरे का छोटा सा घर पीड़ित परिवार का है। फिलहाल यहाँ ताला बंद है और आसपास के घरों में भी लगता है जैसे लोग हैं ही नहीं, यानी सन्नाटा पसरा हुआ है। दिख रहे हैं तो सिर्फ पुलिस वाले और उनकी गाड़ियाँ। लोगों से बातचीत के दौरान पता चला कि लोग कुछ भी बोलने से बच रहे हैं कि आखिर कौन मुसीबत मोल ले। लड़की के परिवार वाले घर छोड़कर बाहर न्याय की भीख मांग रहे हैं और पुलिस वाले उनके घर की रखवाली कर रहे हैं। सन्नाटा चारों तरफ पसरा हुआ है, विधायक के घर पर भी और गाँव में भी। ऐसा लगता है कि गांव में सभी के सामने एक ही सवाल हो कि क्या इस मामले की सच्चाई वास्तव में सामने आ पाएगी और क्या दोषियों को सजा मिल पाएगी। समीरात्मज मिश्र, बीबीसी, उन्नाव।
15वें वित्त आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को लेकर दक्षिण के कुछ राज्य केंद्र के साथ तनाव की मुद्रा में आ खड़े हुए हैं। दरअसल वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही राज्यों को केंद्र से पैसे दिए जाते हैं। दक्षिण के कुछ राज्यों के वित्त मंत्रियों ने मंगलवार को कोच्चि में एक बैठक की और आरोप लगाया कि 15वें वित्त आयोग का जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है वो ठीक नहीं है। उसमें जनसंख्या घटाने के प्रयासों और असल उपलब्धि का एक ऐसा क्लॉज जोड़ा गया है जिसके आधार पर दक्षिण के राज्यों के साथ भेदभाव हो सकता है और पैसे के अभाव में कल्याणकारी योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं। दक्षिणी राज्यों के वित्त मंत्रियों की आशंका के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने फेसबुक पर लिखा कि आयोग का मकसद किसी राज्य के साथ भेदभाव करना नहीं है। सुनिए इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
करीब 3 दशकों के बाद केंद्र और राज्यों के रिश्तों में एक तनाव का माहौल बनता नजर आ रहा है। संविधान के अनुसार हर राज्य सरकार टैक्स लेती है और उसमें से एक बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार को देती है। उसको केंद्र सरकार राज्यों को एक विधि के अनुसार बांट देती है। लेकिन 15वीं वित्त आयोग के विचार के लिए सामने आए विषयों में ऐसी शर्तें रखी गई हैं कि जिससे दक्षिण भारतीय राज्य परेशान हो गए हैं। कल कोची में दक्षिणी राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक हुई जिसमें ये दिखने को मिला है कि केंद्र सरकार राज्य के मामलों में दखल अंदाजी कर रही है। केरला के वित्त मंत्री डॉक्टर थॉमस आइजैक ने BBC को बताया, हम उत्तर भारत के राज्यों को ये कहना चाहते हैं कि प्रगतिशील राज्य पिछड़े राज्यों को ये नहीं कह रहे हैं कि उन्हें संसाधनों के वितरण को रोक देना चाहिए, लेकिन ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि जिन राज्यों ने अपनी आबादी पर लगाम लगाने में सफलता हासिल की है उसको कम पैसा नहीं मिलना चाहिए, जैसे कि दक्षिण भारत के राज्यों के साथ अभी होने वाला है। ये थे डॉक्टर थॉमस आइजैक के शब्द। दरअसल वित्त आयोग के सामने विचार करने के लिए जो विषय प्रकाशित किए गए हैं उनसे दक्षिण के राज्यों की आर्थिक स्थिति पर बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। पिछले वित्त आयोग के नियमों के अनुसार उत्तर प्रदेश जैसे राज्य ने अगर केंद्र सरकार को 1 रुपया दिया है तो उसको 1.79 रुपया वापस केंद्र सरकार से मिलते हैं। दूसरी तरफ कर्नाटका जैसे राज्य ने अगर केंद्र को 1 रुपया दिया तो उसको सिर्फ 47 पैसे ही वापस मिलते हैं। लेकिन अब डर यह है कि आयोग के नए विषयों के अनुसार प्रगतिशील राज्यों को और भी कम पैसा मिलेगा। कर्नाटका के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सिद्धरामैया के प्रतिनिधि और कृषि मंत्री कृष्ण बैरागौड़ा कहते हैं, जिन राज्यों ने आबादी पर नियंत्रण लगाने के अपने राष्ट्रीय कर्तव्य को निभाया है उनको सजा दी जा रही है और जिन राज्यों ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया उनको इनाम दिया जा रहा है। ये थे कृष्ण बैरागौड़ा के शब्द। दक्षिणी राज्यों की परेशानी इसलिए बढ़ गई है क्योंकि केंद्र सरकार ने विचार के लिए विषयों में जो आंकड़े लिए हैं वो 1971 सेंसस की बजाय 2011 सेंसस पर आधारित है। इस कारण प्रगतिशील राज्यों की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ेगा क्योंकि केंद्र सरकार केवल अपने कार्यक्रमों को बढ़ावा देगी। इससे राज्यों के अधिकार पर भी प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ये प्रभाव सिर्फ दक्षिणी भारतीय राज्य नहीं बल्कि देश के दूसरे राज्य जैसे महाराष्ट्र और गुजरात पर भी पड़ेगा। इसीलिए 2 हफ्तों बाद इसी मुद्दे पर देश के सारे राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक बुलवाने का भी ऐलान कर दिया गया है। इमरान कुरैशी, BBC, बेंगलुरु।
डेटा से छेड़छाड़ के आरोपों का सामना कर रही कंपनी फेसबुक के प्रमुख मार्क जकरबर्ग भारतीय समयानुसार देर रात अपना पक्ष रखने और सवालों के जवाब देने के लिए अमरीकी सीनेटरों के सामने पेश हुए। जकरबर्ग ने सांसदों के सामने माना कि उनसे गलती हुई क्योंकि वो राजनीतिक उद्देश्यों के लिए फेसबुक के डेटा के इस्तेमाल को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा सके। उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी में बड़े स्तर का बदलाव लाया जा रहा है और वो इस बात की तह तक जाएंगे कि राजनीतिक फायदे के लिए किस तरह फेसबुक के डेटा का इस्तेमाल किया गया। जकरबर्ग ने यह भी कहा कि फेसबुक रूस द्वारा डेटा से छेड़छाड़ की कोशिशों का लगातार सामना कर रहा है। उन्होंने रूस के इस कथित हस्तक्षेप की तुलना हथियारों की होड़ से की। जकरबर्ग की सीनेट के सामने पेशी का फेसबुक के शेयर पर सकारात्मक असर देखने को मिला। एक रिपोर्ट के साथ न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी।
हाल में थर्ड पार्टी द्वारा फेसबुक यूजर के डेटा चोरी और साथ ही फेक न्यूज या मनगढ़ंत खबरों और राजनीति के लिए प्रचार को लेकर कथित गड़बड़ियों की खबरों के बाद से ही फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग को बहुत से ग्राहकों के गुस्से का तो सामना करना ही पड़ रहा था। अमरीकी सेनेट में मार्क जकरबर्ग की पेशी का भी बहुत से लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मार्क जकरबर्ग फेसबुक के संस्थापक के साथ साथ कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। मंगलवार को अमरीकी सेनेट के सामने पेशी के दौरान भी जकरबर्ग को खरी खोटी सुनने को मिली। सेनेट में पेशी के दौरान लुइजियाना के सेनेटर जॉन कैनेडी ने फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग से कहा कि फेसबुक के यूजर्स के साथ किए जाने वाला समझौता बेहद परेशान करने वाला है।
Your user agreement sucks. You can spot me 75 IQ points. If I can figure it out, you can figure it out.
उस समझौते का उद्देश्य सिर्फ फेसबुक के अपने आप को बचाव करना है, फेसबुक के सदस्यों को उनके अधिकारों के बारे में बताने के लिए नहीं। ये आप भी जानते हैं और मैं भी। मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं कि आप घर जाइए और उस समझौते को फिर से लिखिए। सेनेटर जॉन कैनेडी के शब्द। मार्क जकरबर्ग ने यह माना कि अधिकतर फेसबुक के सदस्य यूजर अग्रीमेंट नहीं पढ़ते हैं। जकरबर्ग ने अपने बयान में कहा कि अब उनकी कंपनी फेसबुक का इस्तेमाल करने वालों की निजी जानकारियां सुरक्षित रखने के लिए काम कर रही है और इस सिलसिले में कुछ अहम बदलाव भी किए जा रहे हैं।
But it's clear now that we didn't do enough to prevent these tools from being used for harm as well. And that goes for fake news, for foreign interference in elections and hate speech, as well as developers and data privacy.
जकरबर्ग का कहना था कि रूसी एजेंटों द्वारा फेसबुक के गलत उपयोग को रोकने के लिए उनकी कंपनी लगातार काम कर रही है। कुछ रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटरों ने जकरबर्ग से यह शिकायत भी की कि फेसबुक पर रिपब्लिकन पार्टी और कंजर्वेटिव या रूढ़िवादी अमरीकी यूजर्स के अकाउंट में रुकावट डाली जाती है। सन 2016 में अमरीका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की मदद करने वाली कंपनी कैम्ब्रिज एनालिटिका ने फेसबुक के 5 करोड़ से अधिक यूजर्स की निजी जानकारियां चुरा ली थी। कई अन्य कंपनियों को भी ग्राहकों की जानकारियां हासिल हुई थी। हालांकि फेसबुक ने इन आरोपों की व्यापक जांच कराने की बात कही, लेकिन अमेरिका और कई यूरोपीय देशों की सरकारों ने फेसबुक के करोड़ों ग्राहकों के डेटा की चोरी और अन्य नियमितताओं पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
भारत के 7 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने 2016-17 में अपनी कुल आमदनी सार्वजनिक की है, जिसके मुताबिक इस दौरान भाजपा की आय सबसे ज्यादा 1,034 करोड़ रुपए हुई। बाकी के 6 राजनीतिक दलों की आय और उनका खर्च क्या रहा, सुनिए कुलदीप मिश्र और सर्वप्रिया सांगवान से।
भारत की 7 राष्ट्रीय पार्टियों को 2016-17 में कुल 1,559 करोड़ 17 लाख रुपए की आमदनी हुई। इसमें 66% हिस्सेदारी केंद्र में सत्ताधारी पार्टी भाजपा की है। भाजपा को 2016-17 में 1,024 करोड़ 27 लाख रुपए की आमदनी हुई।
चुनावों और राजनीतिक दलों की निगरानी करने वाली संस्था एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR की ओर से कल जारी की गई एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।
दूसरे नंबर पर रही भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी 225 करोड़ 36 लाख रुपए की आमदनी हुई, यानी भाजपा को कांग्रेस से 4.5 गुना ज्यादा पैसा मिला।
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी CPI की सबसे कम 2 करोड़ 8 लाख रुपए की आमदनी हुई।
ADR के मुताबिक ये आंकड़े इन पार्टियों की ओर से देश भर में भरे गए आयकर के आधार पर दिए गए हैं।
7 राष्ट्रीय पार्टियों ने जो कुल खर्च सार्वजनिक किया वो था 1,228 करोड़ 26 लाख रुपए।
भाजपा ने 2016-17 में खर्च भी सबसे ज्यादा किया। सत्ताधारी पार्टी ने 710 करोड़ रुपए खर्च किए और कांग्रेस ने कुल 321 करोड़ रुपए खर्च किए।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बसपा ने अपने 70, भाजपा और CPI ने अपने 31 और CPM ने अपनी 6% आमदनी खर्च नहीं की।
भाजपा और कांग्रेस ने चंदे को अपनी आय का 3 में से 1 प्रमुख स्रोत बताया है। भाजपा को उसकी आमदनी का कुल 96.41 हिस्सा यानी 997 करोड़ रुपए चंदे के रूप में मिला।
2016-17 में भाजपा की आमदनी सर्वाधिक रही। आगे बढ़ते हैं। सुबह सुबह लोगों की दिलचस्पी अखबारों की सुर्खियां जानने में होती है, तो तमाम अखबारों को उलट पुलट कर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मानसी दास। मानसी, क्या कहते हैं आज दिल्ली से निकलने वाले अखबार?
पहली खबर बता दूं जो दैनिक भास्कर में है, अभी कुलदीप और सर्वप्रिया ने जो रिपोर्ट सुनाई है वही दैनिक भास्कर की आज सबसे पहले पन्ने पर ऊपर यही रिपोर्ट छपी है। लिखा है, भाजपा देश की सबसे अमीर राष्ट्रीय पार्टी है। और एक खबर जो इंडियन एक्सप्रेस में छपी है वो श्रोताओं को बता दूं, इस खबर के अनुसार महाराष्ट्र के एक किसान शंकर भाऊराव चायरे ने फसल के नुकसान और कर्ज में डूबे होने के कारण आत्महत्या कर ली है और इसके लिए जिम्मेदार बताया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी नीतियों को। किसान ने अपने सुइसाइड नोट में लिखा कि मोदी सरकार की नीतियों के कारण मैं ये कदम उठाने के लिए मजबूर हो गया हूं। अखबार लिखता है कि इस संबंध में मृतक किसान के परिवार, जिसमें अब 5 सदस्य हैं, 4 बच्चे और 1 पत्नी, उस परिवार ने पुलिस में प्रधानमंत्री मोदी के नाम से शिकायत दर्ज कराई है और उनका कहना है कि जब तक मामले में FIR दर्ज नहीं की जाती तब तक वो शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक खबर के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड से कहा है कि अगर वो ताजमहल पर अपना हक दिखाना चाहते हैं तो वो मुस्लिम बादशाह शाहजहां के हस्ताक्षर, माफ कीजिएगा, मुगल बादशाह शाहजहां के हस्ताक्षर वाले ताजमहल के दस्तावेज कोर्ट के सामने सबूत के रूप में पेश करें और इसके लिए कोर्ट ने उन्हें वक्त दिया है 1 सप्ताह का। ये जो मामला है ये साल 2010 का मामला है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की एक अपील का मामला है। ताजमहल पर सुन्नी वक्फ बोर्ड और पुरातत्व सर्वेक्षण दोनों ही अपना दावा कर रहे हैं। पुरातत्व सर्वेक्षण का कहना है कि ताजमहल को उसकी संपत्ति के रूप में पंजीकृत कराया जाए, जबकि वक्फ बोर्ड कह रहा है कि ये उनकी संपत्ति है। एक खबर अमर उजाला से, इस खबर के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सरकार को फटकार लगाई है और कहा है कि कार्यपालिका हमें मूर्ख बना रही है। ये इस रिपोर्ट की हेडिंग भी है, कार्यपालिका हमें मूर्ख बना रही है। कोर्ट का कहना है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए बने कोष का इस्तेमाल दूसरी जगह करना गलत है। पर्यावरण बचाने की और लोगों की मदद के लिए रखे गए 1,00,000 करोड़ रुपए किसी दूसरे कार्य में लगाए जा रहे थे और अगर न्यायपालिका ने इसमें कुछ बोला तो उसे न्यायिक अधिकार क्षेत्र से बाहर जाना और एक्टिविज्म बताया जाता है।
जी, अखबारों की समीक्षा के लिए मानसी दास, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अब तक 11 स्वर्ण पदक, 4 रजत और 6 कांस्य पदक हासिल कर लिए हैं। आज खेल का 8वां दिन है। सीधे चलते हैं गोल्ड कोस्ट BBC संवाददाता रेहान फजल के पास। रेहान, आज किन किन मुकाबलों पर नजर रहेगी, आज सोना जीतने के कितने आसार हैं?
अमरीश, इससे पहले कि मैं ये बताऊं, ये आपको बता देना चाहता हूं कि कल देर रात हुए मुकाबले में भारत के अनास याहिया ने 400 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा, लेकिन इसके बावजूद वो चौथे स्थान पर रहे और कांस्य पदक से चूक गए। आज इस समय शूटिंग के मुकाबले होते हुए विमेन डबल ट्रैप में वर्षा वर्मन और श्रेयसी सिंह मैदान में हैं। थोड़ी देर में फैसला आएगा कि वो क्या पदक जीतती हैं। इसके अलावा पुरुषों का 50 मीटर पिस्टल का फाइनल है, जहां ओम मिथरवाल और जीतू राय क्वालिफाई कर गए हैं। ओम मिथरवाल ने पहला स्थान प्राप्त किया है क्वालिफाइंग राउंड में और जीतू राय भी हैं, तो यहां भी पदक की उम्मीद करनी चाहिए। और मेंस डबल ट्रैप का फाइनल भी होने जा रहा है, जिसमें अंकुर मित्तल और आशाब मोहम्मद भारत की तरफ से भाग लेंगे। बॉक्सिंग के कई महत्वपूर्ण मुकाबले हैं। 45 किलोग्राम में मैरी कॉम फिर रही हैं श्रीलंका की बॉक्सर से फाइनल में जगह बनाने के लिए। अगर वो जीतती हैं तो फाइनल में पहुंचेंगी, इसका मतलब रजत पूरा पक्का। इसके अलावा 5 और बॉक्सर अपने क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगे। सरिता देवी 60 किलोग्राम में, गौरव सोलंकी 52 किलोग्राम में, विकास किशन 75 किलोग्राम में, पिंकी रानी 51 किलोग्राम में और 60 किलोग्राम में मनीष कौशिक। एथलेटिक्स में कई मुकाबले हैं। महिलाओं का जेवलिन थ्रो, महिलाओं का 3000 मीटर स्टीपल चेज, पुरुषों का हाई जंप और लॉन्ग जंप और महिलाओं का 400 मीटर का फाइनल। और बैडमिंटन में मिक्स डबल्स में के और सिंगल्स और विमेन सिंगल्स के भी मुकाबले हैं, जिसमें PV सिंधु भारत की तरफ से होंगी और साइना नेहवाल भी भारत की तरफ से खेलेंगी।
जी रेहान फजल, गोल्ड कोस्ट से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उधर IPL में जो चेन्नई में मैच खेला गया कल, वो बेहद रोमांचक था। उसमें चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर को 5 विकेट से हरा दिया। टॉस जीतकर चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले फील्डिंग का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए KKR की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 202 रन बनाए। 203 रन के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और टीम को लगातार मैच में बनाए रखा। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से वॉटसन ने 42, रायडू ने 39, कप्तान धोनी ने 25 और बिलिंग्स ने 56 रन बनाए। ब्रावो और जडेजा दोनों 11-11 रन पर नाबाद रहे। बिलिंग्स को मैन ऑफ द मैच चुना गया। और अब आज की खास रिपोर्ट। अपनी ज़मीन, अपना घर बार और रिश्ते नातों को छोड़कर किसी और देश में जाकर बसना, नए सिरे से ज़िंदगी की शुरुआत करना आसान नहीं होता, पर उससे भी मुश्किल होता है अपनी पहचान छोड़ना। ایسی ہی کچھ کہانی ہے کاکری سمودائے کے پشتون ہندوؤں کی، جنہیں 1947 کے بٹوارے کے بعد پاکستان چھوڑ کر بھارت آنا پڑا تھا۔ بٹوارے کے 70 سال بعد بھی ان پٹھان ہندوؤں کو اپنی پہچان کو بچائے رکھنے کے لیے سنگھرش کرنا پڑ رہا ہے۔ سنیے جے پور سے پائل بھوئن کی وشیش رپورٹ۔
ترانوے سال کی جسودا بابائی آج بھی اس رات کو یاد کر سہم جاتی ہیں۔ بٹوارے نے اس رات ایسی لکیر کھینچی کہ جسودا کو اپنا سب کچھ چھوڑ کر بلوچستان سے ہندوستان آنا پڑا۔
کپڑے بھی مذاق بناتا ہے، باتوں میں بھی مذاق بناتا ہے۔ جب ہم نے کپڑے سارے چھوڑ دیے، سب لوگوں نے چھوڑ دیا۔
نئی زندگی کی تلاش میں کاکری سمودائے کے یہ ہندو پشتون لوگ بھارت تو آ گئے، لیکن بٹوارے کے بعد کے ماحول میں انہیں بھارت میں مسلمان سمجھا گیا اور ان پر شک کیا گیا۔ تلسی داس 10 سال کی عمر میں ہندوستان آئے تھے، اب وہ 80 برس کے ہو چکے ہیں۔ شروعاتی دنوں کی یاد بہت اچھی نہیں ہے۔
لوگ کچھ تھوڑا سا ہم سے نفرت اس وقت اس لیے کرتے تھے کہ ہمارا پہراوا جو تھا نا وہ وہی مسلمانوں جیسا تھا، یہ ہم کو ہندو سمجھتے نہیں تھے۔
اس سمودائے کی عورتیں اپنے پارمپرک کاکری قمیضوں کو پہننا بہت پہلے ہی چھوڑ چکی ہیں۔
گھاگرا تو چھوڑ دیا، کیا کروں، بہت دکھ ہو گئے۔ جو اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنا مکان چھوڑ دیا، اچھا کھانا پینا چھوڑ دیا، دکھ تو ہوتا ہے۔ یہ کیا پہنا، یہ دکھتا ہے، یہ دکھتا ہے۔
افغانستان پاکستان کی سرحد پر رہنے والے یہ پشتون ہندو بٹوارے سے پہلے بلوچستان کے کوئٹہ، لورالائی، بوری، مکتر علاقے میں رہتے تھے۔ 1893 میں برٹش راج نے افغانستان اور پاکستان کے بیچ ڈورنڈ ریکھا کھینچ دی۔ ان کا پورا کا پورا پشتون علاقہ پاکستان میں چلا گیا۔ بھارت آنے کے بعد یہ ہندو پشتون راجستھان کے اونیارا، چتوڑ گڑھ اور پنجاب کے راجپورا جیسی جگہوں پر آ کر بس گئے۔ چندر کلا برسوں پہلے بتائی اس رات کو یاد کرتی ہیں۔
ہمارے ماں باپ نکلے، کنڈی لگائی، تالا لگایا، گائے تھی ہماری، بچڑا تھا، اس کو کنڈی سے باندھ دیا، چھوڑیا۔
یشودا بترا دوسری پیڑھی کی ہندو پشتون ہے جن کا جنم آزاد بھارت میں ہی ہوا تھا۔ وہ بتاتی ہیں کہ کس طرح ان کی ماں اپنے گھر کو یاد کر رویا کرتی تھی۔
ممی جب کڑھائی کرتی تھی تو ہم بہت چھوٹے چھوٹے تھے، تو کڑھائی کرتے کرتے ممی بڑے اچھے اچھے گیت گاتی تھی، تو اس کو گاتے 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 ممی کے پر ممی کے آنسو بہتے رہتے تھے، ہم کو پتہ نہیں ہوتا تھا۔ ممی گاتی رہتی تھی، پھر میں ممی سے پوچھتی تھی ممی کیا رو رہے، تو ممی بولتی تھی نہیں میں کہاں رو رہی ہوں، رو نہیں رہی۔
شین کھلائے صرف دادی نانی کے قصوں اور کہانیوں میں سمٹ کر نہ رہ جائے، اس لیے اس سمودائے کی تیسری پیڑھی سے آنے والی شلپی شین کھلائے نام سے ایک ڈاکیومینٹری بنا رہی ہیں۔ یہ کہانی درد کی داستان بھی ہے، جہاں ایک مہیلا اپنی پہچان کا مذاق بنائے جانے سے گھر کے دہری سے باہر نہیں جانا چاہتی۔ شلپی اپنے بچپن کے قصے کو یاد کرتی ہیں۔
ایک دن میں نے اپنی نانی کو پوچھا تھا، میں نیچے کھیلنے جا رہی تھی اور میں نے ان کو بولا کہ آپ میرے ساتھ چلیے، تو وہ ایک دم سے ڈر گئیں۔ شی از لائک نہیں 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 میں نہیں جائے گا، میں نہیں جائے گا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتی ہے ایسا لگتا ہے سب میرے کو دیکھتا ہے، میرے منہ پہ یہ ہے نا، اس کو لگتا ہے ایسے دیکھتا ہے، میں نہیں جائے گا۔
افغانستان میں ہندو صدیوں سے رہتے آئے ہیں۔ جواہر لال نہرو وشوودیالیہ میں پشتو بھاشا میں وبھاگ میں پرمکھ پروفیسر عبد الخالد رشید بتاتے ہیں کہ افغانستان سے ہندو پشتو لوگوں کا رشتہ قریب 2500 سال پرانا ہے۔
یہ لوگ وہ پرانے والا پٹھان ہیں جو 2028 سال سے مطلب وہ سائڈ میں رہتے تھے اور ابھی تک ادھر اس کا اثر ان لوگوں پہ ہے۔
بخت بری اور چندر کلا آج بھی پرانے دنوں کو یاد کر جھوم اٹھتی ہیں۔ شاید یہ اپنا پارمپرک ناچ اٹن کر رہی ہیں جو انہوں نے 70 برس پہلے سیکھا تھا۔ پائل بھوئن، بی بی سی نیوز، جے۔
اور اب کارکرم کی سماپتی سے پہلے مکھیہ سماچار ایک بار پھر۔
بی بی سی سماچار۔ اتر پردیش کے اناؤ ضلع میں بھاجپا کے ایک ودھائک کلدیپ سنگر پر بلاتکار کا آروپ لگانے والی پیڑتا لڑکی کے پتا کی پولیس حراست میں موت ہو گئی ہے، جس کے بعد پولیس نے معاملے میں ایس آئی ٹی کا گٹھن کر دیا ہے۔ فیس بک کے سنستھاپک مارک زکربرگ نے راجنیتک کارنوں سے دوسری کمپنیوں کے دوارا ڈیٹا استعمال ہونے دینے کے لیے امریکی سینٹ کمیٹی کے سامنے معافی مانگی ہے۔ سیریا میں ہوئے کتھت کیمیکل حملے کی جانچ کے لیے سنیکت راشٹر میں دیے گئے امریکہ کے پرستاؤ کو روس نے ویٹو کر دیا ہے۔ उत्तरी ब्राजील के शहर बेलम में जेल से भागने की नाकाम कोशिश में 20 लोगों की मौत हो गई है। बीबीसी समाचार।
तो इसी के साथ नमस्कार, भारत की सभा यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। इस कार्यक्रम के दौरान स्टूडियो संभाला दीपक जसरोटिया ने। तो अब अमरेश द्विवेदी को दीजिए अनुमति और देश दुनिया की तमाम खबरें और उनका विश्लेषण जानने के लिए जुड़े रहिए bbcsindhi.com के साथ। नमस्कार।